हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब जानते हैं कि द्वारका में जब भगवान चले गए तो वृंदावन से उनके साथ में केवल रोहिणी माता गई थी, जो बलराम जी की माता है, और यशोदा मैया तो वहीं रह गई वृंदावन में, गृह में। नंद महाराज जो चले गए वो केवल एक ही थी, रोहिणी माता। और फिर भगवान जब मथुरा से द्वारका गए, द्वारका बसाया, और द्वारका नगरी में उन्होंने 16,108 कन्याओं से विवाह किया। उसके अंदर में जो 8 रानियाँ थी वो पट रानियाँ थी, उनकी अलग 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 कहानियाँ हैं उनकी विवाह की। लेकिन जो 16,100 रानियाँ थी उनकी, लोग कहते हैं क्या तुम्हारे भगवान इतने सारे कन्याओं से विवाह करते हैं, फिर इतनी लाखों लड़कियों के साथ नाचते हैं बीच रात में, कैसे भगवान है तुम्हारे, कोई मॉरल है नहीं उनके अंदर, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये सब अज्ञान का परिणाम है। ये सब जो 16,100 रानियाँ थी उनकी, उनको जरासंध ने कैद करने के रखा था अपने जेल में, और सबको मार कर उनको यज्ञ करना था, कुछ शक्ति प्राप्त करनी थी। तो जब जरासंध का भगवान ने भीम के द्वारा वध करवाया तो उनके कारागृह में गए, जैसे कंस का वध किया तो कारागृह में गए और उग्रसेन को मुक्त किया उन्होंने, अपनी माता पिता को भी मुक्त किया। वैसे जब भी जरासंध का वध किया उन्होंने तो वो उनके कारागृह में गए और सबसे पहले 16,100 कन्याओं को मुक्त कर लिया। अभी किसी को मुक्त करेंगे तो खुशी हो जाएगी, उनका ये मुक्त हो गए चलो घर चलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमको घर में स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे कोई। उन जमाने में एक नियम था कि अगर कोई अविवाहित स्त्री अपने पिता का घर छोड़ के किसी के घर में रही, रात को एक रात भी गुजारी, तो उसको भ्रष्ट मानते थे और घर में वापस लेते नहीं थे। तो ये जरासंध के घर में, जेल तो उसका ही घर है ना, मतलब उसका ही राज्य है, उसके जेल में एक कितने साल तक रही, तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि हमने हमको आपने रिहा तो कर दिया, लेकिन हमको लेगा कौन, स्वीकार कौन करेगा, माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, कोई विवाह भी नहीं करेगा क्योंकि हम भ्रष्ट हो गई हैं राक्षस के कारागृह में रहने के पश्चात, तो कैसे होगा हमारा उद्धार, या तो हम आत्महत्या कर लेंगे या तो आपको हमको स्वीकार करना होगा। तो उनको जीवन दान देने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए भगवान ने सभी 16,100 कन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और रानी का पद दिया उनको। हाँ, अरे हम लोगों अगर इच्छा भी होगी तो हम लोग 2 एक्स्ट्रा पत्नियों को नहीं ले सकते, हाँ कहाँ से लाएंगे पैसा उनको पालन करने के लिए, लेकिन भगवान कर सकते हैं। 16,100 क्यों, 16,10,000 भी ले सकते थे वो, भगवान के पास क्या कमी है। पुराणों में कथा आती है कि भगवान ने 3 करोड़ कन्याओं से विवाह किया है काम्य वन में, अपनी लीला करते हुए भी, वो वृंदावन में लीला कर रहे थे एक जगह पर, लेकिन अदृश्य रूप में उन्होंने काम्य वन में जाकर क्या था नाम राजा का, नाम था वो विमल राजा के, 3 करोड़ कन्याओं के साथ उन्होंने एक साथ विवाह किया और 3 करोड़ों कन्याओं के साथ रास नृत्य किया, और रास नृत्य के समय उनके शरीर से जो जल निकला उससे विमल कुंड का निर्माण हुआ, जो 84,000 तीर्थों का राजा है। तो एक ही साथ में यहाँ पर लीला कर रहे हैं भगवान, लाखों लोग कन्याओं के साथ में रास नृत्य कर रहे हैं, और एक ही साथ में 3 करोड़ कन्याओं से विवाह किया, सबको पत्नी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि विमल राजा बहुत दुखी थे, इतनी कन्या मुझे हो गई तो कौन विवाह करेगा। तो भगवान के पूजन किया उन्होंने, तो नारद मुनि ने उनको बताया था कि भगवान कृष्ण ही आपको आके अपनी कन्याओं को स्वीकार करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। तो 16,100 वो और 8 पटरानियाँ, रुक्मिणी आदि 8 पटरानियाँ, उसमें जमुना जी भी आती है, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्यभामा सब आती हैं। 16,108 महल बनाए उन्होंने उनके लिए, ऐसा नहीं कि सबको एक ही घर में रखा झगड़ा करने के लिए सबके लिए समृद्धि, सबको 10 पुत्र और 1 कन्या दिया उन्होंने, उनका खुद का वंश लाखों लोगों का था, जिसको यादव वंश कहते हैं। तो ये सब जो पत्नियाँ थी भगवान की, वो जहाँ जहाँ भी थी बचपन में, जैसे रुक्मिणी विदर्भ में थी है ना, सब अपने अपने पिता के घर में थी, तो जहाँ जहाँ भी थी वो भगवान की बाल लीलाओं के बारे में सुना करती थी कि ये कृष्ण भगवान जो है बालक बनकर वहाँ पर गिरिराज को उठाया, मक्खन चोरी किया, गौचारण किया, राक्षसों का वध किया, सब ब्रजवासियों को आनंद दिया, ऐसी खबर जो है वो आती रहती थी हमेशा। तो जब वो उनकी पत्नी बनी तभी भी उनको भगवान के बाल लीलाओं के बारे में बहुत आकर्षण था कि इनका बाल लीला हमने दर्शन नहीं किया है, सुना भी नहीं उनके बारे में, केवल न्यूज़ सुना था न्यूज़। लेकिन द्वारका में जब रोहिणी माता आके बस गई उनके साथ में, तो बार बार रोहिणी से जिद करने लगे कि हमको आप बाल लीला सुनाइए, बाल कथाओं को सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तो रोहिणी कहते सुनने में बताने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक परेशानी ज़रूर है, क्योंकि जहाँ भी भगवान के ब्रज की लीलाओं का वर्णन होता है वहाँ पर भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं, और जहाँ प्रकट हो जाते हैं भगवान अपनी लीलाओं को सुनते हुए तुरंत ब्रज के बारे में उनको उत्सुकता निर्माण होती है, वो तुरंत रथ निकालेंगे और ब्रज चले जाएंगे। फिर क्या होगा, तुम सब अपने पति को खो बैठोगे, नहीं 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 हमको पति चाहिए, हम बाल लीला नहीं सुनेंगे, हमको पति का संग चाहिए। लेकिन रोज ऐसी इच्छा आती थी, रोज ऐसी चर्चा होती थी। एक दिन इतनी 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 चर्चा हो गई कि उनको रहा नहीं गया, कुछ बात नहीं इनको प्रकट ना करते हुए हम लोग कथा कर सकते हैं। वह कैसे कर सकते हैं, बोले कन्याएं मतलब रानियां बोलती हैं कि हमारे पास उपाय है उसका, हम क्या करेंगे, एक बड़े महल में सब एकत्र हो जाएंगे और रोहिणी जी आप आना और कथा करना। और उसमें एक और स्त्री थी जिनका नाम था देवकी, जो भगवान की माता है, बेचारी इतना तपस्या करती थी, किया उन्होंने, छह पुत्रों का उनकी आंखों के सामने वध हो गया, सातवां गर्भ जो है उसका नाश हो गया, मतलब वो बलराम जी वहाँ प्रकट हो गए गोकुल में रोहिणी के गर्भ में, लेकिन उसके लिए तो गर्भ नाश हो गया ना, गर्भपात हो गया। आठवां पुत्र का जन्म हुआ, भगवान स्वयं प्रकट हो गए जो कंस का वध करने वाले थे, लेकिन जन्म होते ही वो गोकुल चले गए, एक ही बार दूध पिलाया उनको और बाकी सब कुछ आनंद जो है यशोदा को प्राप्त हुआ। अपना पुत्र होते हुए भी बच्चे की नटखट लीलाएं कुछ दर्शन करने को नहीं मिला उनको, सब आनंद जो बचपन का था यशोदा नंद महाराज ब्रजवासियों ने लिया। तो उसको भी वो इच्छा थी, तो पहली बार लौट के आए तो वो 10 साल 6 महीने के हो चुके थे, तो रेंगते हुए बालक तो नहीं थे, तोते तोतले बोल बोलने वाले, वो सब लीला खत्म हो गई थी उनकी, तो उनको बड़ी उत्सुकता थी भगवान के बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए और सुनने के लिए। तो रोहिणी ने कथा करना, दो प्रकार की कथा है इसके अंदर, दोनों बताऊंगा आपको मैं। तो रोहिणी ने कथा करना आरंभ किया, सब रानियां एक कमरे में, बस ये हॉल है, यहाँ पर इकट्ठा हो गई, सब दरवाजे बंद कर दिए, एक दरवाजे पर सुभद्रा को रखा, सुभद्रा जी आप यहाँ खड़े रहो, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही ब्रज की लीला आरंभ होगी कृष्ण बलराम दौड़ के आएंगे, तो दूर से जब आने लगेंगे तब दरवाजा खटखटाना, तो हम लोग कथा बंद करके सब लोग भाग जाएंगे और दूसरी बार कथा करेंगे, फिर दोबारा ऐसे करते रहेंगे पूरी कथा सुनेंगे। तो सुभद्रा जी भी दरवाजे पे खड़े हो गए, उनको भी सुनने की उत्सुकता आ रही, सब लोग रानियां सुन रही है, मैं भी सुनना चाहती हूँ, दरवाजा बंद करके कान लगाकर सुनने लगी वो। और जैसे अंदर शुरू कथा हो गई, रोहिणी जी कथा करने लगी और देवकी जी बैठी हुई हैं, रुक्मिणी जी बैठी हुई हैं, सब रानियां बैठी हुई हैं, अभी कोई चिंता नहीं है कि अभी आएंगे कोई आएंगे नहीं, वो तो दरवाजे पे रखी है उसको, उसका काम है, वो नॉक करेंगे तो हम लोग कथा बंद करके चले जाएंगे, अभी हमको कोई चिंता नहीं है कि भगवान आएंगे और चले जाएंगे ब्रज में, ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। सब कुछ भूलकर मग्न होकर वो कथा सुनने लगे, और अंदर जो है जब कथा हो रही थी सब लोगों को अति आनंद का अनुभव हो रहा था, किसी के रोमांच खड़े हो रहे थे, किसी के आंखों से अश्रु बह रहे थे, किसी का कंठ गदगद हो रहा था, किसी का शरीर कंपन हो रहा था, कोई बेहोश हो रही थी, कोई जग रही थी, कोई उठ रही थी, कोई लोटपोट हो रही थी जमीन पर, ऐसे अनंत आनंद का अनुभव कर रही थी वो। तो सुभद्रा जी कैसे फ्री रहेंगे उससे, सुभद्रा जी भी वहाँ पर ऐसे अनंत आनंद का अनुभव करने लगी, उसके भी रोमांच हो गए, उसके भी आंखों से अश्रु आ गए, सुन रहे केवल भगवान का वर्णन। भगवान की कथा में इतनी शक्ति होती है, क्यों हम लोग करते हैं भगवान की कथा का श्रवण, क्योंकि भगवान का कथा श्रवण करने से साक्षात भगवान के अस्तित्व का आनंद मिलता है और आनंद का अनुभव होता है, रोमांच खड़े हो जाते हैं, भगवान का अनुभव करते हैं स्वयं हम बद्ध अवस्था में भी। तो सुभद्रा जी को भी वही अनुभव हुआ और सुभद्रा जी कुछ समय के बाद में बेहोश होकर गिर गई। लोग सोच रहे हैं कि वो जग रही होगी, जैसे हम सोच रहे हैं कि आप सब लोग जग रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं आनंद में से मैं कथा कर रहा हूँ और सारी जनता जाग रही है, एकदम कान में प्राण एकत्र होकर कथा सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा सच्चा है क्या? कुछ कुछ लोग तो निद्रा के गोद में चले जाते हैं, क्या करें, कोई बात नहीं, सुभद्रा जी निद्रा के गोद में ही चली गई, सुभद्रा जी जो है बेहोश होकर गिर गई अति आनंद में, ऐसी अवस्था में कि बड़ी बड़ी आंखें, इतनी बड़ी मुस्कान कान तक पहुंची हुई है और हंस रही आनंद से, आंखें खुली हुई है और दोनों हाथ और पैर शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, मतलब पूरा शरीर जो है ऐसा गोल हो गया है जिसमें हाथ और पैर भी घुस गए हैं और आंखें बड़ी बड़ी होकर ऐसे हंस रही है और बेहोश होकर गिर गई है। और निश्चित रूप से कुछ ही समय के बाद कृष्ण बलराम वहां प्रकट हो जाते हैं और देखते हैं, अरे आश्चर्य की बात है, सब दरवाजे बंद हैं और सुभद्रा जी बेहोश होकर पड़ी है, क्या बात क्या है। तो वो भी दरवाजे को कान लगाते हैं, सुनने लगते हैं। जैसे वो सुनते हैं अपनी ही कहानी, जैसे हम लोग आपको समझो बताएंगे आपके गांव की कहानी, बचपन की कहानी, तो तुरंत मन से आप बालक बन जाएंगे, है ना। आपकी उम्र अभी 70 साल की होगी, लेकिन अभी हमारे नर्तकी माता जी हैं, जर्मनी की बात बताएंगे तो एकदम कन्या बन जाएगी वो, छोटे से अपनी माता की याद करेंगे, बहन की याद करेंगे, दोस्तों की याद करेंगे, ना। जैसे हमारे बचपन की कहानी हम सुनते हैं तो एकदम मन से बालक बन जाते हैं हम। तो जैसे भगवान सुनते हैं अपनी बाल लीलाओं की कहानी सुनते हैं, तुरंत वो एकदम बालक भावना में आ जाते हैं। उनके भी रोमांच होते हैं, उनकी भी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उनके शरीर के हाथ अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, और गदगद हो जाते हैं। और कुछ देर बाद में दोनों ऐसे हाथ लंबे, बड़ी बड़ी आंखें, पैर शरीर के अंदर घुस गए हैं, ऐसे गिर जाते हैं दोनों तरफ सुभद्रा जी की तरफ, तीनों बेहोश हो गए। वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं जिनका दर्शन हम करते हैं ना, ऐसे हाथ छुड़े हुए, बड़ी बड़ी आंखें हैं। एनीवे वो कहानी में हम नहीं जाएंगे अभी, कहानी में यहाँ पर विश्राम देकर अंदर क्या हो रहा है उसका हम देखेंगे क्या हो रहा है। ये कथा में दो लीलाएँ संबंधित है, एक सम्मिलित है जगन्नाथपुरी का निर्माण कैसे हुआ और उडुपी कृष्ण कैसे निर्माण हुआ, इसका भी कथा इसके अंदर है। तो जब कथा जो है इनकी एकदम पीक में आ गई, एकदम क्या कहते हैं उसको, शिरोमणि स्थान पर आ गई, अग्रस्थान पर, एकदम सब लोग आनंद में मशगूल, एकदम सब लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तीव्र आनंद का, उसमें अचानक कृष्ण और बलराम बाल स्वरूप में अंदर प्रकट हो जाते हैं। बाहर बेहोश होकर गिरे हुए हैं, दूसरे रूप के अंदर, अंदर कथा के प्रभाव से, रोहिणी माता के प्रेम के प्रभाव से, देवकी माता जिस प्रेम से उसको सुन रही है, वो सबके प्रेम की वजह से वो कृष्ण बलराम बालक बनकर अंदर प्रकट हो जाते हैं। हाँ, उनके हाथ में वो रवि है मंथन करने का, वो दोरी है उसको मंथन करने का, हाथ में मक्खन है, दोनों दर्शन देते हैं। तो देवकी माता बालक कृष्ण का दर्शन करते हुए बेहोश होकर गिर जाती है, उसके स्तनों से नदी की तरह दूध बहता है। और रुक्मिणी भगवान की पत्नी है, बाकी पत्नियां भी उनकी पत्नियां हैं, फिर भी उनके मन में उनके पति जो बालक रूप में प्रकट हो गए हैं उनके प्रति वात्सल्य भाव निर्माण होता है, माता की तरह। पति तो है उनके वो, लेकिन फिर भी उनकी तरह उनके मन में अपने ही पति के बाल स्वरूप को देखते हुए माता का भाव उत्पन्न होता है। ये एक कथा हो गई। दूसरी कथा इसकी ऐसी है कि देवकी ने भगवान से जिद की कि हमको आपका दर्शन नहीं हुआ बाल लीलाओं का, हमको दर्शन करना है, आप दिखाइए। तो देवकी के लिए भगवान जो बड़े भगवान थे द्वारकाधीश, तुरंत छोटे हो गए एकदम, वो एकदम बाल स्वरूप में आ गए, एकदम बाल स्वरूप में आ गए और देवकी के गोद में घुस गए। और देवकी में गोद में घुस पर स्तनपान करने लगे, और स्तनपान करने के बाद वहां से उठे और देवकी भी एकदम ब्रज के भाव में आ गई। देवकी एकदम उसका भाव बदल गया पूरा, जैसे भगवान को देखा उसने, और वो भी दही का मंथन करने लगी। अब द्वारका में कोई दही का मंथन नहीं करता है ब्रजवासियों की तरह, लेकिन देवकी उस भाव में आ गई, बड़े मटके में दही मंथन करने लगी। तो भगवान वहाँ से आए, उन्होंने रवि हाथ से छीन लिया, मटके को फोड़ दिया, छाछ गिरा दिया, सब मक्खन चुरा के खाया, गिरे हुए छाछ में उठकर वो भागने लगे, उनके पीछे देवकी भागने लगी। हाँ, ये सब लीला कुछ ही क्षण में भगवान ने किया उसके सामने। और देवकी वो सब रूप देखकर भगवान का इतनी प्रभावित हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई। और ये सब लीला जो है छुप छुप के रुक्मिणी देवी ने भी देखा, जो छुप छुप के भगवान के बाल रूप का द्वारका के अंदर भगवान ने दिखाया हुआ अद्भुत रूप देखा उन्होंने, तो उनके मन में उनके प्रति वात्सल्य भाव जागृत हो गया। फिर उन्होंने अपने पति से जिद किया, नहीं नहीं हमें आपके इस रूप की मूर्ति चाहिए। लीला समाप्त हो गई, भगवान ने जो दर्शन दिया देवकी को, आनंद दिलाया, बहुत देर तक दिलाया, और रुक्मिणी ने छुप छुप के देखा। और देवकी बहुत तृप्त हो गई भगवान का दर्शन करके, तो रुक्मिणी जी ने जिद किया कि नहीं नहीं हम आपके पत्नी हैं, आपके पति के रूप में सेवा करते हैं, फिर भी आपके बाल रूप से हमको प्रेम हो गया है, हमको वो चाहिए। तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, अब विश्वकर्मा को बोला कि आप पशुपतिनाथ जाओ, गंदकी नदी जहाँ पर है नेपाल में, आज के नेपाल में, उस नदी से जाकर दो बड़ी बड़ी शालिग्राम शिलाएं लेके आइए। तो वो लेके आए, फिर भगवान ने अपने निर्देश से विश्वकर्मा के हाथ से उन दो शालिग्राम शिलाओं से दो मूर्तियों का निर्माण किया, एक स्वयं की और एक बलराम जी की। यशोदा को जाकर ब्रज में वो मूर्तियों को दिखाया, यशोदा ने कहा सही है, ठीक है, मैं ऐसे ही था, आप ऐसे ही थे बालक रूप में। जब उन्हें सैंक्शन किया तो उन्होंने वो दो मूर्तियां जो है, एक्चुअली चार मूर्तियां बनाई, दो छोटी बनाई और दो बड़ी बनाई। बड़ी मूर्ति अपनी पत्नी को दी और छोटी मूर्ति देवकी को दे दी। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान लीला करके अंतर्धान हो गए तो छोटी मूर्तियाँ जो थी वो लुप्त हो गई, वो किसी को प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जो बड़ी मूर्तियाँ हैं वो भगवान ने रुक्मिणी को दी। और रुक्मिणी भगवान की प्रत्यक्ष रूप में पत्नी के रूप में सेवा करती थी और अपने गर्भगृह में जाकर भगवान के बाल स्वरूप की वात्सल्य भाव में सेवा करती थी, एक ही साथ में पत्नी भाव और वात्सल्य भाव, माता भाव। और जब भगवान की लीला समाप्त हो गई, भगवान अंतर्धान हो गए, तो ये मूर्तियाँ अर्जुन के हाथ में आई। इसकी भी एक लीला है, क्योंकि जब भगवान अंतर्धान हो गए तो उन्होंने उद्धव जी को, अर्जुन को, परीक्षित महाराज को सब इंस्ट्रक्शन देखे रखे थे कि जब मैं अंतर्धान हो जाऊँगा तो मेरी पत्नियों को कैसे रखना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ ले जाना है। तो उन्होंने उद्धव जी को कहा था कि मेरी पत्नियों को लेकर आपको ब्रज में जाना है, जमुना जी के पास। उसकी लंबी कहानी है, वो छोड़ दीजिए। जब आप ब्रज में आओगे, अभी फरवरी में गोवर्धन, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना में यात्रा है, उसमें आपको गोवर्धन जब ले जाएंगे तब वो पत्नियां वहाँ पर आई थी कुसुम सरोवर के पास, वहाँ पर क्या लीला हुई था आपको वहाँ बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे, आप वहाँ पर आइए। हाँ, तो अर्जुन को ये दो मूर्तियाँ प्राप्त हुई, जो कैसे प्रकट हुए थे, वो हाथ में रवि है मंथन करने का, और डोरी भी है उसके हाथ में, एक बार मक्खन भी है, ऐसे रूप में प्रकट हो गए थे वो। यथावकाश जब रुक्मिणी भी अंतर्धान हो गई, रुक्मिणी ब्रज में जाकर अंतर्धान हो गई है, तो ये मूर्तियाँ अर्जुन को प्राप्त हुई। और जब अर्जुन भी अंतर्धान हो गए, जब पांडव लोग चले गए ना हिमालय की ओर, तब जाकर ये द्वारका में गोपी चंदन के द्वारा आविष्टित हो गए। भगवान की लीला है सब ये, ये दोनों मूर्तियाँ गोपी चंदन से आवृत हो गई। फिर वो गोपी चंदन का एक तालाब है, वहाँ पर गोपी तालाब, वहाँ पर पड़े रहे, और ये लीला वहाँ समाप्त हो जाती है। लेकिन ये द्वापर युग की लीला है, ये दोनों जो महान मूर्तियाँ थी भगवान कृष्ण बलराम की, वो वहीं पर पड़ी रही। युग बदल गया और कलयुग शुरू हुआ। कलयुग के 4339 साल बीत गए और यहाँ पर मध्वाचार्य का जन्म हुआ। मध्वाचार्य जो है वो वायुदेव के पुत्र हैं, पहले वो हनुमान जी के रूप में आए, दूसरे वो भीमसेन के रूप में आए, त्रेता में हनुमान जी के रूप में आए, द्वापर में भीमसेन के रूप में आए, और कलयुग में मध्वाचार्य के रूप में आए, वही वायुदेव। और वो, उनको एक प्रेरणा मिली अंदर से, ये बहुत उनके जन्म की कहानी हम कल करेंगे, लेकिन संन्यास लेने के बाद में उड़पी क्षेत्र में एक बार वो मंत्र को जपते हुए और श्लोकों का निर्माण करते हुए, काव्य रचते हुए एक बार समुद्र किनारे गए। उस समुद्र किनारे हम आज शाम को जाएंगे, इसका नाम है मलपे बीच, मलपे समुद्र किनारा। प्लीज़ ज़रा बच्चों को आप इस तरफ कर दीजिए, प्लीज़ माताओं को विनती है, जिनके बालक यहाँ पर हैं उनकी विनती है कि आप उनको यहाँ पर इस तरफ या तो उस तरफ लेके जाइए। तो मैं क्या कह रहा था, मलपे बीच में मध्वाचार्य पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने एक स्त्रोत्र निर्माण किया। उसके दो स्त्रोत्र उन्होंने बनाए, उनको कुछ अद्भुत प्रेरणा हुई कि यहाँ पर कुछ अद्भुत घटना होने वाली है। अचानक जहाँ पर वो खड़े थे समुद्र किनारे, समुद्र को तूफान आया, बहुत जोरदार, एकदम अचानक आया, कुछ चिन्ह नहीं था, कुछ नहीं था, अचानक बड़ा तूफान आया। और उस तूफान के अंदर उनको दूर समुद्र में एक बड़ा जहाज जो है वो भटकता हुआ नजर आया, और जहाज के लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, और मध्वाचार्य ने सब पुकार सुनी उनकी बचाव करने की। तो मध्वाचार्य वायु के पुत्र हैं, उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं, तो वो संन्यास ले चुके थे, और संन्यास के डंडा पर उन्होंने अपना उत्तरीय वस्त्र बांधा और उसको इस तरह से घुमाया, इस तरह से घुमाया कि वायु तूफान जो था उसकी दिशा बदल गई। फिर उन्होंने जोरदार श्वास लिया, अंदर श्वास अंदर खींच लिया, तो उसके बल से वो जहाज जो था वो एकदम खींच कर किनारे में आ गया। ये सब हम लोग नहीं कर सकते हैं बाय द वे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी कहानी है, क्योंकि वो वायु पुत्र थे इसलिए उनके पास ये अद्भुत शक्ति थी, इसलिए उन्होंने वायु का प्रभाव जो है सक कर लिया उन्होंने, पूरा शोषण कर लिया उसका अपने नाक के अंदर, और दिशा बदल गई तूफान की, और वो हवाई का वो जहाज जो था जल में था वो ऐसा खींच के किनारे में आ गया। और ये सब उनका जो वस्त्र घुमाना और सब कुछ, उस जहाज के मालिक को समझ में आया कि इसी व्यक्ति ने हमको बचाया है। जैसे बच गया वो तो भाग भाग के आकर उसने मध्वाचार्य के चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया, धन्यवाद किया, कहते हमारे जहाज में जो भी कुछ है आप मांग लो, आप ले सकते हो, बहुत सारा वस्तु हम लाए हैं। हम लोग द्वारका से निकले थे, उन्होंने पूछा कहाँ से आए आप, द्वारका से व्यापार करने के लिए हम लोग हवाई जहाज में निकले थे, अपने बोट में निकले थे जहाज में, तो यहाँ पर आ गए दक्षिण भारत में व्यापार करने के लिए, और आपके पास अभी आए हैं, तो आप क्या चाहिए आप लीजिए। तो उस समय पर जब उनका जहाज वहाँ निकला था सामान के लिए, तो जहाज को बैलेंस करने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक दो बड़े गोपी चंदन, एक बड़ा गोपी चंदन जो है वो ऐसा रखा था बीच में बैलेंस करने के लिए, वो यही था। ये भगवान की इच्छा थी कि भगवान को पुनः प्रकट होना था, इसलिए उस समय जो लुप्त हुआ था बड़ा गोपी चंदन का जो ढेर था वो उठाकर उन्होंने वहाँ पर रखा था बोट पर। तो मध्वाचार्य कहते हैं कि हम तो सन्यासी हैं, हमको आपके धन की अलंकार की क्या जरूरत है, हमको गोपी चंदन चाहिए, वो आप दे दो। तो उन्होंने कहा ले लो, उनके हाथ 50 शिष्य भी थे उस समय समुद्र किनारे, उन्होंने प्रयत्न किया उसको उठाने का, 50 लोग भी उसको उठाने पाए, फिर मध्वाचार्य गए, उन्होंने एक हाथ में उसको उठाया और भार लेके आए उसको। लगता ये था कि भगवान को इच्छा थी केवल मध्वाचार्य से ही उठा जाए और किसी को के हाथ से नहीं उठा जाए। तो मध्वाचार्य के हाथ से जब वो नीचे आए तो मध्वाचार्य जो है बड़े प्रेम से उनको लेकर झूमते हुए, जैसे कोई बालक कोई खिलौना लेकर चलता है वैसे वो लेकर चलने लगे, और बचे हुए 10 स्तोत्र उन्होंने वहाँ पर काव्य रचना किया प्रेम से, भावना से। दो पहले उन्होंने स्तोत्र बनाया था, 10 और बनाए जो आज भी द्वादश स्तोत्र नाम के किताब से प्रसिद्ध हैं, जो मध्वाचार्य ने उसका निर्माण किया है, द्वादश स्तोत्र। तो जब वो स्तोत्र बनाते बनाते किनारे से मलबे से आ रहे थे, मलबे किनारा यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से अपने शिष्यों को लेकर वहाँ से आ रहे थे तो उसमें से एक हिस्सा जो है उनकी आंखों के सामने टूट कर गिर गया। जब टूट के गिरा तो दुभंग हो गया ना, उसका भंग हो गया, तो उसमें से बलराम जी की मूर्ति प्रकट हो गई। और बलराम जी मूर्ति ने उनको कहा, बोले उनसे वो कि मुझे यहीं पर स्थापन करो आप। तो मलबे के किनारे में ही मध्वाचार्य ने बलराम जी की मूर्ति स्थापन किया। उसका नाम था उस समय उड़पांडी, उड़पांडी मतलब जहाँ पर बोट आके रुक गई, ऐसा उसका कन्नड़ा में अर्थ होता है उड़पांडी। तो उड़पांडी में वो उन्होंने वहाँ पर बलराम जी को स्थापन किया। वहाँ पर एक मंदिर था स्कंद का, स्कंद माने भगवान, एक देवता है स्कंद नाम की, जैसे इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, वायु है, स्कंद नाम के भी देवता है। स्कंद के पास शक्ति होती है बहुत दिव्य, जिससे आप युद्ध करते हैं। तो स्कंद का वहाँ मंदिर था और नाग का भी मंदिर था, सुब्रह्मण्य नाग का। उसी मंदिर में मध्वाचार्य ने बलराम जी को स्थापन किया, उसका नाम हुआ वडबांडेश्वर, उड़पांडी से नाम हुआ वडबांडेश्वर। उनको वहाँ स्थापन करके बचा हुआ गोपीचंदन का बड़ा जो ढेर था उसको उठा के वो उड़पी क्षेत्र आए। तो यहाँ पर एक मध्व सरोवर है जो आपको दिखाएंगे हम, मंदिर के बिल्कुल बाहर है। मध्व सरोवर में मध्वाचार्य को ऐसे वरदान मिला था कि 12 साल में एक बार गंगा जी वहाँ प्रकट होती है। जब पहली बार आई तो पहली बार उन्होंने गंगा जी ने पूरा कुंड बनवाया केवल मध्वाचार्य को स्नान करने के लिए, पवित्र क्षेत्र बनवाया। इसको पापनाशिनी भी कहते हैं, अनंत पापों का नाश करने वाला कुंड है वो। तो उस कुंड में जब मध्वाचार्य जी उसको लेके आए तो उन्होंने वो पूरा गोपीचंदन का ढेर जो है वो कुंड में डाल दिया, तो सारा गोपीचंदन पिघल कर उसमें से कृष्ण भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान का बहुत अच्छी तरह से षोडशोपचार पद्धति से पूजा करके अभिषेक करके उनको मंदिर में स्थापन किया। वही वो उड़पी कृष्ण मठ है, हाँ, जिसमें हम अभी जाने वाले हैं। तो ये जो मूर्ति है उसके हाथ में एक बड़ा मंथनी है, लंबी, उनसे भी लंबी साइज की है, जो बालक अवस्था में है उनसे भी लंबी है, और दूसरे हाथ में डोरी है। इस रूप में वो खड़े हैं वहाँ पर, बहुत सुंदर बाल स्वरूप है उनका, उनकी इतनी सुंदर आँखें हैं, हाँ, आप लोग उनके आँखों के प्रेम में पागल हो जाओगे, तो गारंटी है हमको। लेकिन देखना बराबर से उनको, ठीक से उनकी आँखों को निहारना प्रेम से। तो उन्होंने जानबूझकर इस मंदिर को एक छोटा सा मंदिर बनाया, क्योंकि वैसे इनकी जो लीला है इतनी भव्य है कि बड़ा भव्य मंदिर बनना था यहाँ पर, लेकिन चंद्रमौलेश्वर और अनंतेश्वर का महत्व कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उससे छोटा मंदिर उन्होंने बनाया। और ऐसा व्यवस्था किया कि जो खिड़की से दर्शन करने का व्यवस्था किया, उनको इच्छा थी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भगवान के भक्त नहीं हैं वो ऐश्वर्य देखकर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर भव्य मंदिर बनाएगा सब लोग आएंगे ना, अभक्त भी आएंगे, भक्त भी आएंगे, गुंडे भी आएंगे, उचक्के भी आएंगे, सब लोग आएंगे, तो छोटा सा प्राइवेट मंदिर होना चाहिए। इस भावना से उन्होंने छोटा मंदिर बनाया और दर्शन भी इस तरह से बनवाया जो खिड़की से हो, और खिड़की भी ऐसे बनवाई इसमें 9 छेद हो। नवग्रह खिंडी कहते हैं उसको, खिंडी का मतलब कन्नड़ा में और कोंकणी में खिड़की, उसको किंडी कहते हैं, किंडी, तो नवग्रह किंडी बोलते हैं उसको। इसमें खिड़की तो है, इसमें भी 6 मतलब ऐसे 2-2 स्तंभ है, इसे 9 छेद बन जाते हैं चौकोनी, जो भी सोने से मढ़वाए गए हैं, उसमें से भगवान का दर्शन होता है। और एक आदमी एक बार मुंह लगा के दर्शन कर सकता है उसमें से, एक छेद में से। तो ये इस तरह से बनवाया उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से 1285 ये साल में, जब कलयुग के 4339 साल बीत चुके थे, उस समय यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति दोबारा प्रकट हो गई, जो आपके सामने प्रस्तुत है, जो आप उसका दर्शन करेंगे। अब ये सब कहानी आपने सुनी, जब आप इसके बाद उसका दर्शन करेंगे तो आपको दर्शन करते हुए सब याद आएगा कि कैसे उत्पन्न हुई, दर्शन किसको मिला उसका, किसको आनंद का लाभ हो गया, ये सब आपको ध्यान में आएगा। इसलिए आपका मन नहीं भरेगा, दोबारा लाइन लगा कर गोल गोल घूमते रहिए। सिस्टम कैसे यहाँ पर है, लाइन लगाते हैं, एक आध दो आदमी उस 9 छेद में अपना मुंह लगा सकते हैं, आंख लगा सकते हैं और देख सकते हैं। दिल नहीं भरा तो वहाँ के पंडा लोग आपको आगे बढ़ो, हो गए, करेंगे, कोई बात नहीं, आप आगे चले जाना, दोबारा लाइन लगाना, और जब तक आपका मन नहीं भरे तब तक दर्शन करते रहना। हाँ, सुबह मंगल आरती होती है 5 बजे, और 5 बजे से मंगल आरती के बाद 7 बजे तो दर्शन जो है वो खुला ही रहता है। अभिषेक पूजाएँ होती रहती है। उस समय हमारे भक्त लोग हाथ में माला लेते हैं, जप करते रहते हैं और लाइन में ही खड़े रहते हैं। जितनी बार 10 बार 11 बार 15 बार जितना भी तक, तो एक बार पैर को देखते हैं, एक बार वक्षस्थल को देखते हैं, एक बार मुख को देखते हैं, एक बार मुख में जहाँ पर मक्खन लगा है उसको देखते हैं, एक बार आँखों को देखते हैं, एक बार मुकुट को देखते हैं, और अनंत बार दर्शन करके मन का समाधान कर लेते हैं। आपके लिए भी ये ट्रिक अवेलेबल है, आप कल उसको सवेरे जल्दी उठ के दर्शन ले सकते हैं। हमारा कार्यक्रम जो है वो 7:30 के बाद शुरू होगा, आप लोग जल्दी उठिए, 5 मिनट के अंदर में मंदिर है, 5 बजे से वहाँ पर आप जा सकते हैं। और मंदिर का नियम है कि पुरुषों के लिए सवेरे 5 से 12 बजे तक ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहनना है, आप धोती पहन सकते हैं, अगर कुछ पहन के गए होंगे तो आपको निकाल के हाथ पे रखना पड़ेगा, और वक्षस्थल जो है ओपन रख के आपको प्रवेश मिलेगा। स्त्रियों के लिए कोई नियम नहीं है, आप अपना जैसे जाना है जा सकते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए 12 बजे की पूजा तक ऐसे ही जाना पड़ेगा वस्त्र उतार के ऊपर के, और जितना हो सके उतना जप करते रहिए, जब खड़े खड़े लाइन में रहिए और जप करते रहिए, दर्शन करते रहिए, ठीक है। अभी हम उडुपी मंदिर के अंदर क्या क्या दर्शन है उसका वर्णन करेंगे। ऐसे कहा गया है कि स्कंद पुराण में सह्याद्री खंड में मधु सरोवर की महिमा का वर्णन आता है, इसको पापनाशिनी भी कहा गया है, और ये बड़ा कुंड है मंदिर के बाहर, इसके एक कोने में गंगा देवी का भागीरथी के रूप में दर्शन है, मगरमच्छ पर बैठी हुई गंगा देवी का स्थापना किया गया है दक्षिण पश्चिम किनारे में। उस जलाशय मतलब कुंड के बीच में एक सुंदर मंडप है, जिसको यहाँ पर मंडप को मंटप कहते हैं कन्नड़ा में। हाँ, और उस मंटप के किनारे से बीच में एक ब्रिज भी है जो जल के अंदर है, यहाँ से चल के आप मंडप में जा सकते हो। और ये जो सरोवर है ये मंदिर के सामने ही है बिल्कुल, यहाँ से मंदिर का रास्ता भी खुलता है और बाहर से भी खुलता है। तो वहाँ पर एक छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापन की गई है, जिसका नाम है चिन्न केशवा, लिख लीजिए सब लोग, हाँ बाद में आपको देखना है, लिख के रेफर करना है। ये सरोवर के किनारे में मंदिर की ओर है चिन्न केशव की मूर्ति है, उसके आगे मंदिर का गर्भगृह यानी कि जहाँ मेन मंदिर है, गर्भगृह कहो या गर्भ गिंडी कहो, वहाँ पर दर्शन भगवान का है, और दर्शन नवग्रह किंडी से होता है जो सोने की प्लेट से मढ़वाया गया है। और ये सरोवर के बाहर एक लकड़ियों से रथ के आकार का एक बहुत सुंदर मूर्ति बनवाया है, रथ के आकार का लकड़ी, उसको कहते हैं कट्टी के रथ, कट्टी के यानी लकड़ी का रथ। और वो जो रथ हम भगवान को बाहर बैठा कर उनको घुमाते हैं उसी के आकार का बनाया गया है, और लकड़ियाँ जितनी लगी हुई हैं उसी से साल भर का भगवान का कुकिंग होता है, और भगवान के रसोई के बाहर ही ये लकड़ी का रथ जो है वो खड़ा है, उसका भी दर्शन आप कर सकते हैं। वहाँ पर खड़े रहने से बहुत सुंदर सुंदर व्यंजनों की खुशबू आती रहती है, कोकोनट ऑयल और जो साउथ इंडियन भोग बनाते हैं उसका सबका सुंदर खुशबू वहाँ पर हमेशा आते रहता है, उसका भी आनंद आप ले सकते हैं। तो इसके आप अंदर जाएंगे तो भगवान के किंडी के सामने एक थोड़ा सा मंडप है और उसका नाम है तीर्थ मंडप। वो तीर्थ मंडप पे संध्या के समय चामर पूजा होती है, दोनों हाथ में सोने के मूठ से बनाया हुआ जो चामर है दोनों हाथ से, वहाँ के जो पर्याय के स्वामी हैं उसकी भगवान की शाम को 7:30 के समय चामर पूजा करते रहते हैं। वो जगह का नाम है तीर्थ मंडप। उसके आगे की जगह जो उसका नाम है चंद्रशाला, जहाँ पर बैठने की जगह है और सब भक्त लोग वहाँ पर बैठ के, आपने सुना होगा ना सुबह आप जब आए तो नमः ओम कितने मंत्र बोल रहे थे ना, वो सब वो वहाँ बैठ के करते हैं। जितने भी तर्पण करना है, जितना मंत्र बोलना है, भजन गाना है, समय के अनुसार पूजा के अनुसार वो सारे वहाँ पर बैठ कर वो सुंदर तरीके से वहाँ पर ब्राह्मण विद्यार्थी और ब्राह्मण और वहाँ के जो सन्यासी हैं विद्यार्थी हैं सब बैठ के वहाँ पर गाते रहते हैं। आप भी वहाँ पर बैठ के जप कर सकते हैं, फिर उठ के दर्शन कर सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है। उस जगह के दोनों तरफ दक्षिण और उत्तर की ओर दो मूर्तियाँ हैं, एक मूर्ति है मुख्य प्राण, एक मूर्ति है गरुड़ देव। ये मुख्य प्राण यानी कि हनुमान जी, हाँ ये मुख्य प्राण यानी हनुमान जी, और उनके ठीक सामने गरुड़ जी की मूर्ति है। किसी मंदिर में आप जाएंगे तो आपको हनुमान जी और गरुड़ जी की मूर्ति मिलेगी। तो मुख्य प्राण और गरुड़ जी की मूर्ति जो है, एक स्वामी थे जिसकी कहानी बताऊंगा आपको मैं, उसका नाम था वादिराज स्वामी। वादिराज स्वामी ने अयोध्या से मुख्य प्राण को और गरुड़ जी को लाया था और यहाँ पर प्रस्थापित किया था। फिर जो नवग्रह खिड़की है उसी के ठीक सामने दूर यानी कि चंद्रशाला के पास एक और खिड़की मिलेगी आपको, उसको कहते हैं कनकेन किंडी। कनक दास एक भक्त का नाम है, और कनकेन मतलब कनक का, ऑफ कनक, किंडी यानी कि खिड़की, तो वो खिड़की का नाम है कनकेन किंडी। उसकी कथा यह है कि भगवान कृष्ण के विष्णु के एक बहुत सुंदर भक्त थे, उनका नाम था कनक दास, लेकिन वो शूद्र कुल से थे, उनका जाति जो था ब्राह्मण नहीं थी, वो शूद्र कुल के थे। बड़े भक्त हैं भगवान के, वो उनकी कई ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनका भजन संग्रह बहुत फेमस है, तो लेकिन वो जन्म से शूद्र थे। और आप जानते हैं ब्राह्मण लोग बहुत गर्व करते हैं अपने ब्राह्मण होने पर और पुजारी होने पर, तो उन्होंने कनकदास को मंदिर से आने को रोक दिया, तो कह रहे थे आप शूद्र हो आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कनकदास बहुत दुखी हो गए, और जहाँ पर यह खिड़की है वहाँ से भगवान का दर्शन करने के लिए खिड़की के पास आके रुक गए, और वहाँ से भगवान के रो रो कर गीत गाने लगे, भगवान को पुकारने लगे। आज जहाँ पर भगवान खड़े हैं, आज जहाँ पर आप भगवान को देखेंगे नवग्रह खिड़की से, अभी भगवान का मुख उसकी तरफ है, लेकिन जब इसको स्थापन किया गया था मध्वाचार्य की तरफ से, तब भगवान का मुँह जो था दूसरी दिशा में था। जहाँ पर एक्चुअली मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करने का रास्ता है उस तरफ भगवान का मुँह था, यानी कि मैं जैसा बैठा हूँ वैसा मुँह था, और आज वो इस तरफ है। तो भगवान ऐसे खड़े थे, जब भोग लगाने के लिए मंदिर बंद किया गया तो दोबारा जब खोला गया तो भगवान ऐसे टर्न हो गए थे कनकदास को दर्शन देने के लिए। कनकदास के भजन और पूजन और भावना से भगवान इतने प्रभावित हो गए कि भगवान ने मध्वाचार्य में जिस जगह पर स्थापन किया था वहाँ से टर्न होकर उन्होंने खिड़की की तरफ मुँह किया। इसलिए आज वो नवग्रह खिंडी के सामने भगवान का चेहरा है, और उसी से आए वो खिंडी जुड़ी हुई है आगे, और बाहर से भी आपको भगवान का दर्शन उसमें से हो सकता है जहाँ से कनकदास ने भगवान का दर्शन किया था। ये चमत्कार देखकर पुजारियों ने तुरंत उनको अंदर प्रवेश दिया, और आज भी उस खिड़की के बाहर कनकदास की बड़ी मूर्ति स्थापन की गई है, और खिड़की में वहाँ उपस्थित है। खिड़की के सामने चंद्रशाला है, चंद्रशाला के सामने तीर्थ मंडप है, तीर्थ मंडप के सामने नवग्रह खिड़की है जिसके अंदर भगवान विराजमान है। ठीक है, समझ में आपको आया ज्योग्राफिकल लोकेशन? ओके। तो इस मंदिर के अंदर जो एक्चुअल प्रवेश द्वार है मंदिर का, मंदिर के जहाँ भगवान विराजमान है उसके राइट साइड में वादिराज ने मध्वाचार्य की मूर्ति भी स्थापन की है। थोड़ा आपको जरा अंदर घुस के राइट में टर्न करके देखना होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर जाके टर्न करके देखना होगा, उधर बैठी हुई मध्वाचार्य की मूर्ति वाड़ीराज महाराज ने स्थापन की है। फिर गर्भगुड़ी या गर्भगृह के अंदर दो कमरे हैं, वहाँ आप जब बार बार घूमेंगे तो आपको दर्शन होगा। एक कमरे के अंदर वहाँ के सन्यासी पुजारी गण जो हैं वो हमेशा बैठकर तर्पण और मंत्रोच्चार करते रहते हैं, और एक जगह पर अंदर भगवान स्वयं विराजमान हैं। उस समय मध्वाचार्य ने कुछ दीपक जलाए थे, वो दीपक आज भी जल रहे हैं, मध्वाचार्य के समय से आज भी वो दीपक जल रहे हैं, वो भी वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। और भगवान का सुंदर विग्रह है, हाथ में मथनी है और मथनी की डोरी भी है, और भगवान सुंदर काले रंग के शिला के अंदर शालिग्राम जी के तरफ से बनाए गए सुंदर विग्रह हैं। और उसी जगह पर जो अंदर के दो कमरे हैं उसके अंदर भगवान का शयनोत्सव भी होता है। हाँ, शयनोत्सव यानी रात के समय पर भगवान को सुलाते हैं, झूले में झुलाते हैं सोने के, और सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। स्वयं मध्वाचार्य वो सुंदर सुंदर गीत स्वयं गाया करते थे और भगवान को झुलाते थे। दो बार उनको झुलाया जाता है, एक बार झुलाकर फिर दूसरी जगह पर दूध और मिठाई का खिला पिलाकर दोबारा डालते हैं सोने के झूले में और उनको झुलाते हैं, लेकिन ये बंद होने के बाद अंदर सेवा होती है, इसका दर्शन नहीं होता है, लेकिन जो गीत गाते हैं वो सुनाई पड़ते हैं। आप रात को सुनेंगे अगर आपका भाग्य होगा तो, कमरे से भी आप सुन सकते हो। ध्यान से सुनना, वो जो 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 ऐसे बोलते रहेंगे, उस समय वो भगवान का शयनोत्सव चलते रहता है। शाम को मेरे ख्याल से चामर पूजा 7:30 को होती है, फिर 8 से 9 के बीच में कभी भी आपको ये भजन सुनाई पड़ सकता है। आप जागरूक रहिए, अपने कान को सब बनाए रखिए, आपको बीच में ये सुनाई पड़ेगा 8 और 9 के बीच में, फिर 9 के बाद मंदिर बंद हो जाता है। फिर रात्रि पूजा होती है, तो रात्रि पूजा में जो मुख्य प्राण हैं उनकी गुप्त पूजा होती रहती है। एनीवेज, फिर उसके आगे भगवान जो कृष्ण भगवान खड़े हैं उनके चरणों में पांडुरंग की मूर्ति भी है छोटी सी, उसके बाजू में और एक कृष्ण की मूर्ति है जिसका नाम है यन्ने कृष्णा, छोटी सी दो कृष्ण की मूर्ति है। आप जब जाएंगे बार बार, आपको एक ही बार में सब कुछ नज़र नहीं आएगा, बार बार जब जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि भगवान के पैर के पास भी दो कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति पांडुरंग जी की है, कमर पर हाथ रखें, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत में पांडुरंग जी का बड़ा विशेष महात्म्य है। सब मंदिरों में, हाँ, सब जगह पर आप कहीं भी जाएंगे तो पांडुरंग की मूर्ति आपको किसी भी मूर्ति के बीच में मिलेगी, चाहे वेंकटरमणा का मंदिर हो, नरसिंह भगवान का मंदिर हो, और किसी का भी मंदिर हो, पांडुरंग की छोटी मूर्ति आपको वहाँ मिलेगी। तो इधर भी है वैसी मूर्ति है। और फिर हम मंदिर के बाहर जब आएंगे तो एक वसंत महल है, वसंत महल यानी कि व्यासपीठ, यहाँ पर सब साधुगण जो है बैठकर लेक्चर्स, प्रवचन, सत्संग करते रहते हैं। उसके सामने और एक प्रसादमशाला है, भोजनशाला कहते हैं उसको। उस भोजनशाला के पास में दूसरी एक मुख्य प्राण की मूर्ति है हनुमान जी की, और वहाँ पर भी उसका भी अलग प्रकार से उनकी सेवा वहाँ पर चलती रहती है, और उनके आँखों के सामने सब लोग जमीन पर प्रसाद पाते हैं। वहाँ पर इतना स्वच्छ जगह है, थोड़ा सा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, उस पर हर भी हफ्ते में एक बार जमीन पर भोजन परोसा जाता है, राइस, सांभर, सब्जी, दाल, जो भी कुछ है जमीन पर, मार्बल के जमीन पर लोग प्रसाद पाते हैं। तो भोजनशाला के अंदर भी मुख्य प्राण की मूर्ति है। फिर तो उसके बाद में गौशाला है, मंदिर बहुत बड़ा है, उसके अंदर गौशाला है, वसंत महल के सामने है, और एक सुंदर मूर्ति वहाँ पर मंदिर है, अंदर एक छोटा मंदिर है, उसका नाम है सुब्रह्मण्य गुड़ी। सुब्रह्मण्य की यानी कि साउथ इंडिया में मतलब होता है सांप, नाग का मंदिर है वो सुब्रह्मण्य गुड़ी। और उसकी कहानी अब मैं बताने जा रहा हूँ, सब लोग एकदम एंथुजियास्टिक है, जग रहे हैं सब लोग, हरे कृष्णा। अभी आपको मैं वाड़ीराज महाराज की कहानी बताऊंगा, जिन्होंने जिनके द्वारा ये सुब्रह्मण्य गुड़ी बनाई गई है। तो वाड़ीराज महाराज जो थे उनका जन्म जो है 1480 में हुआ, 120 साल जिए वो, 1480 में जन्म होने के बाद 1600 साल में उनका देहांत हो गया। मध्वाचार्य द्वारा 8 मठ बनाए गए हैं भगवान की पूजा के लिए, उन्होंने 8 प्रमुख शिष्य बनवाए और उसके 8 मठ बनवाए, हर एक शिष्य को एक मठ दिया। जो उनका मठ है वो कृष्णा मठ से अलग है, और कृष्णा मठ के आसपास 30-35 किलोमीटर के अंदर एक एक का मठ है सब लोगों का, चार दिशा में। तो 8 मठ के नाम इस प्रकार से हैं, कनियोर मठ, श्री सोड़े मठ, पुत्तिगे मठ, हदमार मठ, पेजावर मठ, पलीमार मठ, कृष्णपुर मठ और शिरूर मठ। इसमें सोड़े मठ में संप्रदाय के अंदर इनका जन्म हुआ था। सोड़े मठ के जो आचार्य हैं, मध्वाचार्य का जन्म जो है 1238 में हुआ था। उन्होंने 1285 में भगवान कृष्ण की स्थापना की थी और 1480 में वाजराज का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रामाचार्य था और माता का नाम गौरी था, और वो सोड़े मठ के आचार्यों में से एक थे। रामाचार्य गृहस्थ थे और उस समय मंदिर में वागीश तीर्थ नाम के आचार्य थे, सोड़े मठ के आचार्य थे। तो वागीश तीर्थ महाराज के पास उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया, आशीर्वाद देने के लिए। तो वागीश जी महाराज को ये दर्शन हुआ मन में कि इनके घर में इनके पुत्र के रूप में एक महान विभूति जन्म लेने वाली है। तो उन्होंने पहले से इनको कहा कि मैं आपको आशीर्वाद दूंगा पुत्र प्राप्ति का, लेकिन जैसे पुत्र होगा आपको मंदिर को दान देना होगा उस पुत्र को। तो रामाचार्य जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि एक काम करते हैं, आपको पुत्र जरूर होगा, अगर उस पुत्र का जन्म घर के अंदर हुआ तो वो आपका, अगर बाय मिस्टेक पुत्र का जन्म घर के बाहर हुआ, मतलब ओपन एयर में या कहीं घर के आपके घर के बाहर कहीं भी हुआ, तो फिर पुत्र को आपको मंदिर में देना होगा। यथा अवकाश उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो रामाचार्य ने सबको इंस्ट्रक्शन दिया, पत्नी को घर के बाहर नहीं जाना है किसी भी स्थिति में, कुछ भी काम हो उसको नहीं करना है, बाकी सबको करना है। भले प्रेगनेंसी हो, फर्स्ट मंथ में हो, सेकंड मंथ में हो, सिक्स मंथ में हो, एट मंथ में हो, पूरी प्रेगनेंसी में कहीं भी बालक का जन्म बाहर नहीं होना चाहिए, घर पे ही होना चाहिए। इसे बचा के रखा उनको, पत्नी बाहर ही निकली नहीं, क्योंकि तो उनको डर था कि अरे कहीं घर के बाहर डिलीवरी हो गई तो हमारा लड़का जो है सन्यासी बनेगा, मंदिर में जाएगा। एक दिन कुछ उनके 6 महीने हो गए थे प्रेगनेंसी के और घर में भोजन कर रही थी अपनी पत्नी को, भोजन परोस रही थी। तो उस समय क्या हुआ, अचानक न्यूज़ आई कि खेत में गाय खेत को खा रही है, बहुत सारी गाय खेत को खा रही है। तो उस समय एकदम वेग में आवेग में आकर खाते खाते बोला, जाओ जाओ जल्दी जल्दी वो तो गाय को सबको हगा डरा दो और भगा दो वहाँ से। तो अचानक पत्नी भी वैसे ही एकदम स्पॉन्टेनियसली वहाँ से निकल गई और खेत में जाकर गाय को हटाने लगी, तुरंत उसकी वहाँ डिलीवरी हो गई। प्रेगनेंसी पूरी भी नहीं होती उनकी, 9 महीने पूरे नहीं होते, फिर भी उनकी बालक का जन्म हुआ। फिर उनको सन्यासी को दिया हुआ शब्द को पालन करना पड़ा और वाजिराज जी को मंदिर में दान दिया उन्होंने। वाजिराज जी बहुत भगवान के भक्त थे और जन्म होने के बाद उनका नाम रखा गया भूवराह। अभी भी यहाँ पर एक भूवराह नाम का आश्रम है, सौदे मठ का आश्रम है वो ये नाम वाजिराज का नाम था बालक बचपन का। उनका 5 साल के उम्र में ब्राह्मण दीक्षा हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, हाँ जनी संस्कार हुआ, और 8वें साल के उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। आपका उम्र कितना है? 8। संन्यास ले सकते हैं क्या? तो ऐसे महान भक्त थे। 5वें साल में ब्राह्मण संस्कार, 8वें साल में संन्यास लिया उन्होंने और वो 120 साल तक जिए। इस मंदिर में एक सिस्टम है, इसका नाम है पर्याय सिस्टम, इसको यहाँ पर पर्यावा कहते हैं कन्नड़ा में। उसका अर्थ यह है कि 8 प्रमुख शिष्यों के द्वारा भगवान की सेवा होती है और 2-2 साल के एक भक्त के हिस्से में सेवा आती है, एक मठ के हिस्से में 2 साल की सेवा आती है। इस तरह से इस मठ का 2 साल, उस मठ का 2 साल, उस मठ का 2 साल, इस तरह से 14 साल होने के बाद में दोबारा फिर 2 साल की सेवा पहले वाले व्यक्ति को आती है। तो 2 साल खुद सेवा करते हैं और फिर 14 साल रुकते हैं और फिर 2 साल की सेवा मिलती है। तो उस समय उस मठ के जो स्वामी जी हैं वो यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, पहले स्वामी जी से पूरा एक टेक ओवर कर लेते हैं। इस जनवरी में 2nd वीक में वो पर्यावरण चेंज का उत्सव है, उसको पर्यावरण अंतरण उत्सव कहते हैं, बहुत बड़ा उत्सव होता है। वो जो लेने वाले स्वामी जी हैं अपने पूरे शिष्यगणों के परिवार से यहाँ पर आते हैं और जो देने वाले स्वामी जी हैं बड़े उत्सव के साथ में सारा जो सामान है उनको हैंड ओवर करते हैं और सेवा भी हैंड ओवर करके उसके बाद 2 साल की सेवाएं। तो इस साल में किसी को रूम क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण ट्रांसफ़र उत्सव है, इसलिए सब भक्तगण धां धां से बड़ा धूमधाम से कई दिन तक उत्सव होता है, रथ यात्रा होती है, भोजन सबको जगह मिलता है और बहुत बड़ा उत्सव होता है, हैंड ओवर उत्सव होता है। तो उस समय ये जो 2 साल का सिस्टम है ये सब जो है वाड़ीराज महाराज ने बनाया है। मध्वाचार्य ने उसको स्थापन किया था, उसके बहुत सारे डिटेल्स जो है वो वाणीराज महाराज ने उसको इस्टेब्लिश किया है, और आज जो पर्याय सिस्टम चल रहा है वाद्यराज के द्वारा दिए गए निर्देशों पर चल रहा है। वाद्यराज भी स्वयं वायुदेव के वंशज माने गए हैं, वारस बोलते ना मराठी में वारस, और इन्होंने जब जन्म उनका हुआ और संन्यास लिया तो एक जगह पर एक व्यक्ति गणेश जी की मूर्ति बना रहे थे। जब गणेश जी की मूर्ति बना रहे तो उसका सर हाथी का होगा ना, तो हाथी का सर भी बनाया गया। जब हाथी का सर बनाया गया अचानक उस मूर्तिकार के सामने ही उस हाथी का सर चेंज होकर घोड़े का सर आया। भगवान का एक रूप है सत्ययुग में हुआ करता था, उसका नाम है हयग्रीवा। हयग्रीवा मतलब जिसका सिर सर जो है वो हय यानी कि घोड़े का है। एक हयग्रीव नाम का राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी का तपस्या किया था, उसका सर घोड़े का था, शरीर आदमी का था। उसने ब्रह्मा जी तपस्या किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि मेरा वध जो है वो केवल मुझ जैसा जो आदमी होगा उसके हाथ से होगा, ऐसा वरदान मांगा। क्योंकि उसको पता था कि ब्रह्मा जी ने जो 84 लाख योनियां उत्पन्न की है उसमें ऐसी कोई योनि नहीं है जिसका सर घोड़े का हो और शरीर मनुष्य का हो। मतलब क्या सोचा उसने कि मैं अमर हो जाऊंगा। हिरण्यकश्यप ने क्या बोला था, आदमी से नहीं, जानवर से नहीं, पंछी से नहीं, शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, जल में नहीं, स्थल में नहीं, पानी में नहीं, किधर नहीं उधर नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं बीच में नहीं, सब प्रकार के जैसे जैसे मृत्यु हो सकती है सब उन्होंने मांग लिया। फिर भी भगवान ने ऐसा अद्भुत रूप धारण किया और ऐसे अद्भुत समय में अद्भुत तरीके से शस्त्र से भी नहीं और अस्त्र से भी नहीं, जमीन पर नहीं, स्थल पर नहीं, आकाश में नहीं, बीच में रखकर उसका वध कर दिया। वैसे ही हयग्रीव राक्षस को मारने के लिए भगवान ने भी हयग्रीव का उद्धारण किया और हयग्रीव का वध कर दिया। तो वो जो विष्णु का स्वरूप है हयग्रीव, वो शीश उस गणपति के मूर्ति के जगह पर प्रकट हो गया। मूर्ति ने मूर्तिकार से बताया कि मुझे जाकर वाणीराज को दे दो। तो हयग्रीव भगवान की वाणीराज पर विशेष कृपा थी, वो स्वयं भी बताते थे अपने जीवन में। तो ये मूर्ति फिर वाणीराज को अर्पण की गई। तो इस प्रकार से ये सोने की मूर्ति थी, बाय स्वर्णकार ने इसको बनाया था। ये वाणीराज महाराज जी 6 महीना उन्होंने त्रिवेणी संगम पर तपस्या किया है इलाहाबाद में, और वहाँ पर स्वयं वेद व्यास से प्रकट होकर उनको दर्शन दिया उन्होंने। फिर ये तिरुपति ना तिरुमला साउथ इंडिया में, वहाँ पर जब वो गए थे तो दरवाज़ा बंद था, तो उन्होंने प्रार्थना किया तो तिरुपति के बालाजी महाराज बाहर आकर उन्होंने दर्शन दिया उनको। दरवाज़ा बंद था उस समय, फिर भी अकेले वाणीराज महाराज को तिरुपति महाराज ने दर्शन दिया। फिर जब पंडरपुर गए तो विट्ठल भगवान ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। फिर जब ये कोल्लूर, यहाँ पर एक 70 किलोमीटर दूर जाएंगे आप उत्तर की ओर तो कोल्लूर नाम की जगह है जहाँ पर दुर्गा परमेश्वरी का दर्शन है। वहाँ पर तुंग और भद्रा दो नदियों का उगम होता है जो मिलकर तुंग भद्रा बन जाती है आगे, बहुत सुंदर जगह है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब ये गए तो वहाँ की जो देवी देवी है मूकाम्बिका देवी, उन्होंने उनको दर्शन दिया। इस तरह से बहुत अद्भुत थे वो। और इनकी जो किताब है इसमें उनका चमत्कारों का वर्णन किया गया है, कुछ चमत्कार हम अभी आपको पढ़ के बताएंगे। इनका राजा जो था विजयनगर का उस पर बड़ा प्रभाव था। दक्षिण कन्नड़ा में मंदिर के पुजारी को जब उन्होंने दर्शन दिया तो वाजिराज महाराज ने, वो क्या हुआ कि एक यहाँ पर जगह है जहाँ पर गांव में पानी नहीं था, वाणीराज महाराज जब वहाँ पर गए और उन्होंने पुजारी ने विनती की यहाँ पर पानी नहीं मिलता है, वर्षा नहीं होती है, तो उन्होंने अपना डंडे से जमीन पर आघात किया और वहाँ से कुंड निर्माण हो गया। फिर विजयनगर के राजा पर बहुत उनकी कृपा थी। राजा विजयनगर का उनके पास में आया और कहा कि भी राज्य में बहुत आर्थिक संकट चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो वाजिराज स्वामी ने क्या किया, वाजिराज स्वामी ने वाली और सुग्रीव का जो छुपा हुआ धन था वो इनको प्रकट करके अर्पण कर दिया। रामायण के समय वाली और सुग्रीव ने जो धन छुपा कर रखा था जमीन के अंदर, उस जगह को उन्होंने प्रकट करके सब धन उनको देकर उनका आर्थिक संकट दूर कर दिया। फिर एक यहाँ पर जगह है दक्षिण में, उसका नाम है मूड बिदरी। तो मूड बिदरी में इनके आंखों के सामने विट्ठल की मूर्ति प्रकट हो गई इनके शक्ति के द्वारा, और हजारों के जगह पर उन्होंने जाकर जो भूत प्रेत का जो प्रभाव था वो हजारों जगह पर जाकर उन्होंने समाप्त कर दिया अपने प्रभाव से। और एक कहानी मैं बताने जाऊंगा, जो सुब्रमण्य गुड़ी है उडुपी कृष्ण के मंदिर के अंदर, उसके ऊपर एक डायरमा बना हुआ है, मिट्टी के चित्रपट बने हुए हैं चारों तरफ। उसकी कहानी ऐसी है कि वाडीराज स्वामी जो है वो हिमालय में गए थे एक बार, और हिमालय में जाकर उन्होंने तपस्या किया तो एक शिला पर बैठ कर तपस्या कर रहे थे। अचानक मुसलमान सैनिक वहाँ पर भाग भाग के आए, उन्होंने मना कर दिया उनको, यहाँ पर तपस्या नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते हैं? बोले मुसलमान राजा का जो पुत्र है उसको यहाँ दफनाया गया है, उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। तो उनको आश्चर्य हुआ सब शिष्यों को। वाडीराज ने कहा ये जो पुत्र आपने दफनाया हुआ है वो मरा नहीं, वो जिंदा है। सैनिकों ने कहा कि नहीं नहीं वो तो मर गया था, फिर मरने के बाद दफनाया गया उसको। तो उनको आश्चर्य हुआ बहुत ये महाराज की बात सुनकर, तो भाग के वो राजा के पास गए। राजा भी दौड़ के आए, यहाँ पर भजन नहीं करना है आपको, ये मेरे पुत्र की समाधि है। तो राजा को वाडीराज महाराज ने बताया कि आपका पुत्र जो है जिंदा है, खोद के दिखाओ। तो उन्हें खुदवाया उसको और पुत्र को जिंदा करके बाहर निकाला। तो राजा प्रसन्न हो गया बहुत, राजा ने बहुत सारा धन जो है वाडीराज जी को अर्पण किया। वाडीराज ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं धनवन नहीं लेता आपका, मना कर दिया। फिर भी उन्होंने जिद किया और उनको धन दे दिया। तो उनके आंखों के सामने कुछ देर के बाद में सारा धन उन्होंने गंगा नदी में बहा दिया। तो दोबारा राजा आया, महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया, मेरे सैनिक बता रहे थे, मैंने भी देखा कि आपने मेरे द्वारा दिए गए सारे धन को नदी में बहा दिया। मेरी इच्छा है कि आपको मेरा धन लेना चाहिए, मैं दोबारा आपको धन देना चाहता हूँ। तब वाडीराज के मन में एक प्रश्न विचार ऐसा आया, भगवान ने उनको प्रेरणा दिया, उन्होंने कहा कि उडुपी मठ में भगवान कृष्ण की सेवा में अगर कभी आगे जाकर संकट आया तो ये धन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने धन स्वीकार किया, धन स्वीकार करके उन्होंने आकर ये जो सुब्रमण्य गुड़ी है जहाँ सर्प का नाग का मंदिर है उसमें खुदवाई करके वो धन सब छुपा दिया, ना रख दिया उसके अंदर, और ये ऐलान कर दिया कि जब कभी आगे जाकर कलयुग के प्रभाव से उडुपी कृष्णा मठ की सेवा में कोई बाधा आएगी, धन की संपत्ति कोई नष्ट हो जाएगी, कोई कष्ट होगा, तो उस समय ये धन जो है ये खोद कर निकाल सकते हैं और उसके भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस धन की रक्षा करने के लिए ऊपर नाग को स्थापन कर दिया, इस नाम क्या पड़ गया, सुब्रमण्य गुड़ी। उसका दर्शन आप कर सकते हैं और ऊपर भी चित्रपट दे सकते हैं। एनीवे बहुत सारे चमत्कार हैं इनके। तो कहने का तात्पर्य है कि वाडीराज महाराज ने कई सैकड़ों ग्रंथ लिखे हैं और टीका टिप्पणी भी किया है, और कई साल के बाद में 120 साल के बाद में उनका शरीर उन्हें त्याग दिया, और सोड़े मठ में उनका समाधि भी है 1600 साल के अंदर। ऐसा हुआ कि जब उन्होंने 1600 साल आया, 1600 ईयर अपियर्ड, तब उन्होंने सबको ऐलान कर दिया कि मैं समाधि लूँगा, समाधि का स्थान बनवाया और उसमें उन्होंने प्रवेश किया और वो बंद कर दिया और अंदर ध्यान में बैठ गए। जब अंदर ध्यान में बैठ गए तो सभी लोगों की आंखों के सामने आकाश में एक प्रकाशमान रथ नज़र आया उनको। उस रथ में वाडीराज स्वामी बैठे हुए नज़र आए और विष्णु के दूत उस रथ को हाँक रहे थे, इसका दर्शन सबने किया। जैसे उन्होंने समाधि में प्रवेश किया तो आकाश में सब भक्तों को नजर आया, दर्शन हुआ कि ये भगवान के धाम में जा रहे हैं। ये घटना जो है 1600 साल में हुई। तो ये वाडीराज महाराज का जो सुब्रमण्य गुड़ी है उसका आप दर्शन कीजिए, फिर आप अंदर जाएंगे तो एक जगह बचती है, उसका नाम है नवग्रह गुड़ी, वहाँ पर नवग्रह का दर्शन है। उसके आगे जाएंगे तो वृंदावन नाम की जगह है, यहाँ के कुछ सन्यासी लोग का शरीर छोड़ता है समाधि उनकी, वहाँ पर मंदिर में वृंदावन नाम के जगह पर बनाते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण उडुपी कृष्ण मठ का अंदर का जो दर्शन है वो वर्णन पूर्ण होता है। और साथ साथ में थोड़ी वो बात मैं और बताऊंगा वहाँ जाने के पहले। मध्वाचार्य महाराज ने 16 प्रकार की पूजा स्थापन कर दी, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। पहली पूजा है निर्माल्य विसर्जन पूजा, कल पहने हुए जो वस्त्र और फूल है उनको उतार देते हैं, तो उषक काल पूजा होती है। उसके बाद में मध्वाचार्य ने अपने हाथ से एक अक्षय पात्र दिया था मंदिर में और कहा था कि इस मंदिर में इस अक्षय पात्र के प्रभाव से कभी भी भोजन बंद नहीं होगा। हजारों लोगों को यहाँ पर भोजन खिलाते रोज, उनकी इच्छा थी कि अनंत काल तक अक्षय पात्र के द्वारा यहाँ पर भोजन खिलाया जाएगा। तो वो अक्षय पात्र अभी भी है, उसका एक बड़ा चम्मच भी है उसकी और गाय की, उसके बाद पूजा होती है। उसके बाद भगवान का पंचामृत अभिषेक होता है। मैं आपको विनती करूँगा सबको हाथ जोड़ के, आप सवेरे जाकर भगवान का अभिषेक जरूर देखना। भगवान के ऊपर खड़ी शक्कर, केला, ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, घी, सबके सामने उनका अभिषेक करते हो आप, लाइन से लगाकर टर्न बाय टर्न उसको अभिषेक देख सकते हैं। हर रोज़ सुबह होता है। तो उसके बाद में कलश पूजा होती है, सोने का कलश होता है, उसके सामने भगवान की, सोने के कलश से भगवान का अभिषेक करते हैं। उसके बाद में तीर्थ पूजा होती है, फिर उसे कई प्रकार के उसमें डिटेल्स हैं, उसमें हर समय कापूर, हर समय पर अलग अलग प्रकार की आरतियाँ, फिर तुलसी, फिर ड्राई फ्रूट्स, उसके उसका अभिषेक और अर्पण भोग चलते रहता है। फिर उसके बाद में अलंकार पूजा होती है। इस अलंकार पूजा में हीरे, सोना और अलग अलग रत्न जो है भगवान के ऊपर लगाते हैं, लेकिन ये सेवा जो है वो बंद दरवाजे में होती है, क्योंकि बहुत सारे अबजों रुपये की कीमत के रत्न जो है वो वहाँ पर है, वो जो भगवान को लगाते हैं। उसके बाद में अवसर सनकादि पूजा होती है। इसकी एक विशेषता यह है कि जब मध्वाचार्य ने इस मंदिर में कृष्ण भगवान को स्थापन किया तो ब्रह्मा जी के चार पुत्र जो हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चार पुत्र जो ब्रह्मा जी के थे, इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने योग बल से अपने शरीर को केवल 4 साल का बना के रखा था ताकि उस शरीर के अंदर काम वासना उत्पन्न नहीं हो। उनकी लंबी कथा भागवत में आती है। एनीवेज, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बड़े आचार्य हैं, उनके द्वारा सनत कुमार संप्रदाय शुरू होता है, कुमार संप्रदाय। वो चार कुमार जो है मध्वाचार्य को आके दर्शन दिए, उन्होंने कहा कि आपने इतना सुंदर यहाँ पर भगवान का सेवा करने का जो व्यवस्था बनाई है, मैं जानता हूँ, मतलब हम जानते हैं, चार भाई कहते हैं, हम जानते हैं कि रुक्मिणी के द्वारा सेवित ये भगवान के विग्रह हैं। द्वारका में रुक्मिणी ने वात्सल्य भाव से इनकी सेवा की है, हमको भी कुछ समय के लिए इनकी सेवा करने की इच्छा है। तो वो एक आधा घंटा है, 7 से 7:30, मध्वाचार्य उस समय भगवान के मंदिर से उठकर चले जाते थे और दरवाज़ा बंद करके चार कुमार उस समय अदृश्य अवस्था में आकर आधा घंटा बड़े भाव से भगवान की सेवा करते हैं। तो क्या नाम हुआ उसका? अवसर सनकादि पूजा। उस समय मंदिर बंद होता है और चार कुमार जो हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, उस समय गुप्त रूप में भगवान की सेवा करते हैं। फिर दरवाज़ा खुल के पुजारी अंदर चले जाते हैं और फिर अपनी सेवा आरंभ करते हैं। फिर महापूजा होती है, ये दोपहर को 12 बजे होती है। ये जो पहली 6 पूजाएँ हैं, अलंकार पूजा तक और अवसर सनकादि पूजा तक, ये 8 बजे तक समाप्त हो जाती है। आप देखिए इतना सुंदर दृश्य है, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ, इतने डिटेल में होती है। उसमें कछुआ साहिब की दीपक होता है, उसमें मत्स्य आकार का दीपक होता है, इसमें 50 आकार के दीपक होते हैं और किसमें 2-4 बाती है, किसमें 50 बाती है, किसमें 100 बाती है, ऐसे अनेक प्रकार के अलग अलग रूप में बातें होती है। एक के बाद उसकी आरती चलती रहती है और सभी आरती से बाहर आती है, बाद में उसके पंचामृत बाहर आता है और केले और खड़ी शक्कर और फूल फल ड्राई फ्रूट्स का अभिषेक भगवान को होते रहता है, उसको आप देखते रहिए। उसके बाद में शाम को पूजा, दोपहर को पूजा होती है महापूजा, जो 12:30-1 के आसपास होती है। फिर 7:30 को चामर सेवा पूजा होती है। फिर उसके बाद में रात्रि पूजा होती है। रात्रि पूजा के समय मंदिर बंद रहता है, अंदर पूजा होती रहती है। उसी समय मुख्य प्राण की पूजा भी होती रहती है बंद दरवाजे में। फिर मंडप पूजा होती है और उसके बाद में एकांत सेवा यानी कि शयनोत्सव, तो भगवान को गीत गाकर शयन कराते हैं, सोने के पलड़े में झुलाते हैं। और ये 14वीं सेवा समाप्त होने के बाद में फिर जो आचार्यगण हैं वहाँ के सेवा करने वाले, उसके बाद में जो मध्वाचार्य का, हाँ एक जगह बताने को भूल गया मैं, जहाँ पर मंदिर का प्रवेश द्वार है वहाँ पर लेफ्ट साइड में एक जगह है, वो मध्व आसन नाम की जगह है। वहाँ पर मध्वाचार्य ये सब सेवाएं समाप्त करने के बाद में 9 बजे के बाद में बैठे थे और सबको मंत्राक्षता प्रसाद दिया करते थे। आज भी ये आचार्यगण जो है मध्वाचार्य के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ बैठकर सभी आने वाले भक्तों को मंत्राक्षता प्रसाद देते हैं, दर्शन देते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, फिर 11 बजे का प्रसाद पाते हैं, केवल 1-2-3 घंटा सोते हैं बस, फिर सुबह को 2:30 बजे उठते हैं, मध्व सरोवर में स्नान करते हैं और शुचिर्भूत होकर 3 बजे मंदिर में प्रवेश करते हैं और ये सब निर्माल्य विसर्जन, उषक काल पूजा, ये सब आरंभ होता है उनका। दिन भर उनका शेड्यूल चलते रहता है कंटिन्यूअसली एंड दे हार्डली स्लीप, क्योंकि ये सब सेवा करने के बाद में बीच में प्रवचन भी करते हैं, बीच में भक्तों को भी मिलते हैं, प्रसाद भी देते हैं, उनका प्रश्नोत्तर भी करते हैं, दीक्षा भी देते हैं, और बाकी जन्माष्टमी का उत्सव बीच में होता है, कभी गौ पूजा का उत्सव होता है, कभी गोवर्धन की पूजा होती है, कभी वो सब चलते रहता है उनका। इस प्रकार से 2 साल के लिए जब तक उनकी सेवा का समय है वो केवल 2-3 घंटा ही सोते हैं, फिर वहाँ पर जो उनका अष्टमठ का आश्रम है वहाँ पर वो चले जाते हैं और दूसरे आचार्य सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। और एक उत्सव है रथ यात्रा उत्सव, जो रात को हमको आज दिखाई पड़ेगा। हाँ, रथ यात्रा यहाँ का बहुत फेमस उत्सव है, कई प्रकार की रथ यात्रा यहाँ पर होती है। एक रथ यात्रा है जो छोटे से रथ में होती है, दूसरी रथ यात्रा है जो सोने के पालके में होती है, वो भी आपको दर्शन मिलेगा भाग्य होगा तो। सोने की पालकी जो है ऐसे आकार की होती है, उसमें बीच में भगवान बैठते हैं, प्योर गोल्ड की वो पालकी है, उसमें रथ यात्रा होती है। एक गरुड़ के रथ में यात्रा होती है, वो गरुड़ोत्सव कहते हैं उसको। चौथी यात्रा जो है रजत रथ यात्रा कहते हैं उसको, चांदी के बड़े भव्य रथ में भगवान की रथ यात्रा होती रहती है। दूसरा है स्वर्ण रथ यात्रा, पालकी नहीं है, स्वर्ण का रथ है पूरा बना हुआ, उसमें अभी कभी दर्शन मिलेगा आपको भाग्य से तो हो जाएगा, वो जैसे मनोरथ होता है वैसे एक एक दिन निकालते हैं। और लास्ट जो है सबसे भव्य रथ यात्रा है ब्रह्मोत्सव नाम की होती है। इस प्रकार से 6 प्रकार की रथ यात्रा यहाँ पर हर रोज होती रहती है टर्न बाय टर्न। और दीपावली के समय लक्षद्वीप का उत्सव होता है, 1 लक्ष दीपक जलाते हैं भगवान के आनंद के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर उडुपी मंदिर के कथा का और दर्शन का वर्णन समाप्त होता है। और आप सब लोगों को विनती है कि दर्शन कीजिए। एक आखिरी बात बताऊँगा मैं आपको, मैं कि यहाँ की जो भगवान की सेवा है वात्सल्य भाव से होती है। हर रोज भगवान नए नए मनोरथ करते हैं, उसका मतलब क्या है, पुजारियों को प्रेरणा होती है तो कभी वो गीतोपदेश दर्शन करते हैं, मतलब भगवान को सोने का रथ बिठाकर जैसे मानो भगवान अर्जुन को गीता उपदेश कर रहे हैं ऐसा दर्शन होता है। शुक्रवार के दिन देवी का दिन है तो शुक्रवार के दिन कभी वो सरस्वती बनते हैं, कभी चंडिका बनते हैं, कभी पार्वती बनते हैं, कभी लक्ष्मी बनते हैं, कभी सरस्वती, शारदा, लक्ष्मी, शुक्रवार के दिन। और रविवार के दिन वज्र कवच दर्शन होता है, उनका मुकुट और वस्त्र पूरा हीरे से बना हुआ है, कंप्लीट हीरा फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो संडे को हम लोग यहाँ पर 1 तारीख को यहाँ से निकलने वाले हैं, यहाँ से निकलने के पहले आप सब लोग वज्र कवच दर्शन करके निकलेंगे। हाँ, और बाकी के दिनों में ऐसा कहते हैं कि यशोदा के भाव में पुजारियों को मन में प्रेरणा होती है और वो जैसे भगवान की इच्छा होगी, कभी द्रौपदी के भाव में, कभी रुक्मिणी भगवान का इंतजार कर रही है वो भाव में, कभी गीतोपदेश, कभी वराह दे वराह, केवल वराह और नरसिंह भगवान का दर्शन नहीं होता है क्योंकि उसके लिए मुख को भी चेंज करना पड़ता है, केवल मुख को छोड़ के पूरे शरीर को बदले करके वो दर्शन अलग अलग होते रहता है, इसलिए वराह दर्शन, नरसिंह का दर्शन, हयग्रह दर्शन यहाँ पर नहीं होता है। और मंदिर के बिल्कुल बगल में लग के एक पूरा भंडार है उनका, उसमें सारे साहित्य लगे हुए हैं। हाँ, गीतोपदेश का रथ भी वहाँ पर है और जितने जितने अवतार है वो उनकी भुजाएँ हैं, भुजाओं के अलंकार हैं, सब वहाँ पर रखे हुए हैं। आज दर्शन क्या है, मैंने दर्शन नहीं किया है, आप जाके दर्शन कर सकते हैं और जो पुजारी वहाँ खड़े होते हैं वो बताते हैं आज का दर्शन क्या है। तभी इसके बाद में हम चलेंगे और दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। उडुपी कृष्ण भगवान की जय हो।